पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार सम्बोधि पादं भुजाय ते नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ये नमो आज एकादशी तिथि और उसमें भी उत्थान एकादशी उभय कार्तिक के महीने में आज के बाद ही नियम सेवा समाप्त होता है। कहीं कहीं जो लोग एकादशी से व्रत करते हैं, शयन एकादशी से जो आरंभ किया और फिर कार्तिक महीने में एकादशी से जो किया, उनकी उनका व्रत आज समाप्त होकर के कल से उसको व्रत भंग करें। किंतु शास्त्रकारों ने उसमें 5 दिन और जोड़ दिए हैं, भीष्म पंचक। इसलिए हमारे गोस्वामियों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने और आधुनिक युग में भक्ति प्रचार करने वाले श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी और उनके प्रिय शिष्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, शिष्य ही कहो ना, पुत्र तो लोग कहते हैं किंतु यथार्थ में वही उनके गुरु हैं सब विषय। तो उन्होंने पूर्णिमा के लिए ही आदेश दिया और पूर्णिमा से ही उन्होंने आरंभ किया, पूर्णिमा को वो समाप्त करते हैं। हम लोगों से बहुत अधिक बुद्धि रखते थे, जितने हमारे संप्रदाय में बड़े बड़े आचार्य अभी हैं या कुछ दिन पहले हुए हो गए हैं ना, उनके शिष्य लोग हो गए हैं, विद्वान प्रतिभाशाली सब आचार्य, तेजस्वी आचार्य हो गए हैं। किंतु मैं समझता हूँ कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के युक्ति विचार शास्त्र ज्ञान भक्ति इत्यादि के विषय में सबके गुरु हैं। उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों के लिए नियम बनाया, जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ परिवर्तन किया है, वो हम लोगों के लिए कल्याणकारी है। उसको हम लोगों को बदलना नहीं चाहिए ने? उनसे हम बुद्धिमान चलाक और अधिक भक्तिमान नहीं हैं, किंतु कुछ लोग उसको बदल करके कहते हैं कि ये शास्त्र में एकादशी से है, द्वादशी से है व्रत, और उसी दिन भंग कर लेना चाहिए। हमारे समझ से ये गुरु जी का प्रधान तर्क था और युक्ति थी, प्रभुपाद से हम लोग अधिक समझने वाले नहीं हैं और न कभी उनसे अधिक समझ सकते हैं। सिद्ध होने पर भी उनके अनुगत ही रहना पड़ेगा, तो साधन में तो बात ही क्या। इसलिए उन्होंने जो व्यवस्था दी है उसी के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। तो आज उत्थान एकादशी है, श्री गौरकिशोर दास राज महाराज जी का आज तीरोभाव विरह दिन है, विरहोत्सव है। हम लोग आज सवेरे पूज्यपाद माधव महाराज जी के मठ में गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने इसके विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना और कुछ कहा भी। हमारी यही इच्छा हुई कि इस समय तो अब सब लोग अनुकल्प करके सो जाएंगे, तो उसमें से हम लोग कुछ समय लेकर सभी लोग मिलकर के गौतु सोदास महाराज जी के अपराकृत चरित्र के संबंध में सभी बहुत से वैष्णव लोग हैं कुछ न कुछ बोलें, जैसे कि हमारी वाणी भी शुद्ध हो और भक्तिमय हो और हमारा कल्याण हो, और वो जहाँ रहे होंगे जरूर सुनेंगे। हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं किंतु जरूर वो सुनेंगे, और उनकी ये सब कहने से प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। उनकी गुरु जी की प्रशंसा होगी ना, उनका जीवन चरित्र का आलोचना करेंगे। जीवन चरित्र में दो बातें होती हैं, पहली बात उनके कुछ जीवन ऐसे होते हैं और भजन जिसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, और कुछ है जो हमारी शिक्षा के लिए कुछ नीचे उतर करके उन्होंने हमारे लिए जो शिक्षाएं रख छोड़ी है या जीवन में वैसा किया है उसको हम लोग ग्रहण करें, और बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग और उन्नत होने के बाद में उसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। इस स्थिति में हम लोग चाहेंगे भी तो नहीं, उनका जैसा कठोर वैराग्य हम करने जाएं तो एक दिन में ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा त्याग वैराग्य, जमुना का मिट्टी खाना, राधाकुंड की मिट्टी खा लेना और ऐसे भगवान पर निर्भर रहना, उनकी जो गुण है वो हम लोगों के लिए संभव पर नहीं है। पैखाना टट्टी में रहना, बल्कि मठ मंदिर को छोड़ करके यहाँ पर सब लोग आते हैं भजन में डिस्टर्ब करते हैं, कद बाबा जी महाराज हमको पुत्र दे दीजिए, हमको रुपया दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, ऐश्वर्य दे दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, उनका भजन नष्ट होता है। इसलिए उनके दुर्गंध से बचने के लिए पैखाना का दुर्गंध सह करके उसमें भजन करना वो उत्तम समझते हैं। हम लोगों के लिए ये सब संभव पर एक सेकंड नहीं होगा, इसलिए उनके चरित्र जो हमारे लिए उत्तम महाभागवतों का चरित्र कनिष्ठ अधिकारी साधारण रूप में समझ नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर मना किया गया है। इसलिए मध्यम अधिकारी के अनुकूल जो चरित्र जिनके हैं ऐसे लोगों के संग से ही हमारा अधिक कल्याण है। तो आज हम लोग उनके संबंध में हम विभिन्न वक्ता यहाँ पर हैं, कुछ पुराने भी हैं नवीन भी हैं, वो लोग उनके संबंध में कुछ बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे और कुछ कहेंगे। सबसे पहले हम भक्ति सिपास भक्ति संत भक्ति वेदांत संत महाराज जी से हम कुछ कहेंगे, वो कुछ उनका गुण कुछ वर्णन करें। इनकी तबीयत खराब है, छोड़ दीजिए, आप बोलिए। तो आप जितना समय तक 2, 5, 10 जितना मिनट बोल सकते हो सहज रूप में उनके संबंध में, आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत प्राचीन आदमी हैं आप।
अज्ञानकुलस्य गणनशलकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अजानुलम्बितभुजौ कनकावदतौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायतत्सु विश्वम्बरो दिगभरौ जगधर्मपालौ वन्दे करुणावतार हरे कृष्ण सच्चैश्वरितरत्न नामग्नन प्रीतग्रन्थिश्रेणीशुभवपतिशोत्तिलकर विशालाक्षौ दीर्घार्कुलजुगलक्लान्तितभुजौ सचैतन्य किङ्गमे पुनरपीदिशोरजश्रुतीपदम् नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम कृतयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनम गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरि। भैक्ताविहीनाय अपराधलक्षस्कृतार्थ तमादि तरंग मध्ये दीपामयी तम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणा। मध्य सतीत्वभ्राता पूज्यपाद श्यामी श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण महाराज आमार अयोग्यर पर निर्देश करेछेन गौरीशंकर बाबाजी चरित्र सम्बन्धे आमि बोलबो। তার চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়ার মতো আমার ভাষা নাই, ভজন নাই। তবে তিনি অনুগ্রহ করে রচনায় যেটুক প্রকাশিত করেন তত অধিক আমার যাওয়ার সমর্থ নয়। সেজন্য আমি সত্যি মন্ডলের কাছে এবং আমার প্রয়োজনীয় বৈষ্ণবদের কাছে আমি প্রার্থনা করি। বৈষ্ণবের চরিত্র সদায় পবিত্র, তাদের চরিত্রটি নির্মল। আর বৈষ্ণবের মধ্যেও কয়েকটি স্তর আছে, মহাভাগবত পরমহংস উত্তম অধিকারী মধ্যম অধিকারী কনিষ্ঠ অধিকারী ও বালিশ। বামন হয়ে চাঁদকে যেমন কখনো ধরা সম্ভব হয় না, আমরা বালিশমতি নিয়ে সেই মহাভাগবতের চরিত্র বর্ণনা করা ধৃষ্টতা মাত্রই। তবে যেটু আমি খুব ছোট্ট নিজে গৌরীশঙ্কর বাবাজি ইহা আমার জানা ছিল না। আমার পিতামহীর সঙ্গে আমি শ্রী নবদ্বীপ ভ্রমণে এসেছিলাম, আমার বালককালের কথা বলছি। তখন একজন সাধুকে একবারে শীর্ণ কায় চুলদাড়িতে বিভূষিত কতিপয় যুবক ছেলে তাকে ঠেলাচ্ছে, ধুলো ছড়ছেন, কেহ কেহ নিষ্টিবনও ত্যাগ করছেন তার শিরদেশে। দেখি কি রে, এরা এরকম করছে কেন লোকটাকে? লোকটা কি পাগল? তিনি সেই ধামের ধুলোতে গড়াগড়ি দিয়ে বলছেন, গৌরসুন্দর গৌরসুন্দর আর তো। তারপরে যে কি উষ্ট্র স্পন্দন করে কি বলছেন তার কারো শ্রুতি বিচার হয় নাই। পরবর্তীকালে তার জীবন চরিত্রের জাহানিকে আমরা শ্রবণ করেছি, তিনি ছিলেন এই শ্রীধাম নবদ্বীপের মধ্যে পরমহংসের চরম অবস্থায়, যাহা আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে। তাদের চরিত্রটি দর্শন করবার মতো নবদ্বীপবাসী কারো ছিল না। কোনো একদিন নাম বলা নিষিদ্ধ ভীত পাঠক তিনি তখন এখন যেখানে নাকি বড়ালঘাট, তখন এখানে ছিল চড়া, গঙ্গা ছিল একবার সেই সুরগঞ্জের রেল লাইন, এই তো তোরা দেখিস নাই, তোরাতে একটা বিরাট বটগাছ ছিল। এই বটগাছের এক পাশে থাকতেন গৌরকিশোরদার বাবাজি, আর তার কি দূরে থাকতেন সেই বংশী ইয়া গৌরকিশোরদার বাবাজি। তাই তিনি বহু সময় শুনেছি যে ক্ষুধার্ত হলে কোথায় যাবেন, গঙ্গার তীরে গিয়ে গঙ্গার জল ও খাদা নিয়ে, তাই তিনি হাপ করে খেয়ে যেতেন। এগুলি আমাদের দেখা নয়, আমার শোনা, শোনাও যার তার কাছে শোনা নয়, বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভক্তজনের কাছে। একদিন কোন ভীত পাঠক তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, এসে বলছিলেন তোমার যদি খুবই ক্ষুধার্ত মনে করো তবে আমার বাড়িতে যেও, পেট ভরে খাইতে দেবো। যিনি ভীতক পাঠক যাহাকে বলেছিলেন তিনি স্বয়ং এই মৎসাটি, টুনে টুনে উনি চলে গেলেন। তারপর কতিপয় ভক্তকে তিনি বললেন মহা অপবিত্র স্থানটি এটিকে খুঁজে ফেলে দাও তো, এদিকে এক মাথা সমান মাটি কেটে গর্ত করে এই বাড়িটা ফেলে দিলেন গঙ্গার পরপারে নিয়ে, গঙ্গায় দিলেন না, একেবারে সেই রেল লাইনের কাছে নিয়ে ফেলে দিলেন, দিয়ে গোবর দিয়ে গুলিয়ে জায়গাটাকে পবিত্র করেছিলেন। কেন যে জন্ম ঐশ্বর্য শ্রুত শিবির হেদমান মদত্তমান, যে চারটে আভিজাত্য আছে তো জন্মগত একটা আভিজাত্য, জন্মাভিচার্যের দ্বারা ভগবানকে বা ভক্তদের কর্তব্য দর্শন করা যায় না, ঐশ্বর্যের প্রভাবকে দর্শন করা যায় না, ছাউনি পাড়া চোখে যেমন কিছু দেখতে পাওয়া যায় না, জন্ম একটা আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্য একটা আভিজাত্য, আরো দুইটা আছে, একটা স্ত্রীগত আভিজাত্য আর একটা হলো পাণ্ডিত্য আভিজাত্য। আবার সেই গৌরকিশোরদাসের নিকটে ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ছিল সরস্বতী ঠাকুরকে, তখন তিনি সরস্বতী ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন না, বিমলা প্রসাদ নামে পরিচিত ছিলেন। বিমলা প্রসাদ তুমি নাম দীক্ষা গ্রহণ করো গৌরকিশোরদার বাবাজির কাছে, পিতৃবৎসল ছিলেন, গিয়ে প্রভু আমাকে একটু কৃপা করুন অনুগ্রহ করুন। আমরা তো অনেক সময় মুখের মধ্যে বলি কৃপা করুন, অর্থাৎ কৃপা করুন মানে কৃপা গ্রহণ অনিচ্ছা প্রকাশ। সেই জন্য সিদ্ধার্থ সরস্বতী ঠাকুর একবার একটা প্রদর্শনী করতে গিয়ে করেছিলেন, একটা কূপ, কূপেতে একটা লোক পড়ে আছে, বলছে আমাকে উঠাও আমাকে উঠাও, হ্যাঁ, আর দুইজন লোক একটা ঝুড়ি ফেলে দিয়েছে দড়ি দিয়ে, ইহাতে উপবেশন করো টেনে উঠাই, ওটা যখন গায়ে লাগে তখন সরে যায়, আর চেঁচাচ্ছে আমাকে উঠাও আমাকে উঠাও, আর এটাতে বসো। আমরাও ঠিক এরকম মুখে বলি কৃপা করো কৃপা করো, কিন্তু অন্তরে সবসময়ই কৃপা গ্রহণের অনিচ্ছা, সরে যাবো। কিন্তু তিনি এসে তার কাছে তখন প্রার্থনা জানেন, দূরে যা, বিরক্ত করবে না, যা দাম্ভিক, দাম্ভিক আছে হরিনাম নিতে, তিনি বড় জ্যোতিষ ছিলেন, জ্যোতিষ বিদ্যায়তে পারদর্শী ছিলেন, তাহলে ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য ছিল না। সরস্বতী টাইটেলটি পেলেন সেই জ্যোতিষের থেকে, জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শিতায় বিতাড়িত করে দিয়েছেন। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছেন, ঠাকুর আমাকে তো তাড়িয়ে দিয়েছেন, আবার যাও। যেমন ঠাকুর নরোত্তমকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন লোকনাথ বাবার, তার আকাঙ্ক্ষা লোকনাথ ব্যতীত আর আমার গুরু নাই কেউ, আর লোকনাথের প্রতিজ্ঞা আমি কখনো মন্ত্রদীক্ষা কাউকে দেব না। কি করেছিলেন লোকনাথ স্বামীর নরোত্তম ঠাকুর, তার বিষটাকে পরিষ্কার করে মাটি কাঁকর সেইগুলিকে গুলে ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে দলা করে রেখেছেন। কেন তুমি করো নির্বাক, আর যদি আমাদের মধ্যে যদি এরকম কেউ করেন, হায় রে হায়, তাকে যদি একটু কিছু বলা যায় তাহলে সেটা থাক তোমার সেবা দেওয়া, আমি চললাম হরিদার চলল নিজের ঘর বাড়িতে। আসামের জন্য একদিন কোনো এক ভক্ত বলে বসলো, এত সেবাই যদি করতে হয় তাহলে আমার বাড়িতেই ভালো, মঠে এসেও এত সেবা করতে হবে, তাহলে বাড়িতে কি দূর ছিল। আমরা তো ঠিক যেমন নরোত্তমের সেবা প্রভাবেতে লোকনাথ গোস্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছিল, বিমলা প্রসাদে একাগ্রতায় সেই গৌরীপুরদার বাবাজির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছিল, তাও একবার না বারত্রয় উপেক্ষিত হয়েছে, চতুর্থ বারেতে এসে যাও বাবা যাও, আমাকে বারবার তাড়িয়ে দেয় কি যাবো যাও যাও। এবার নিশ্চিত ব্যাপার অভিমান ছাড়তে পারবে, অবনত মস্তকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি করার পর যাও স্নান করে আসো। এই তার যে চরিত্র এই নবদ্বীপ মাসিগণের কাছে কেহ প্রকাশিত পায় নাই, তার সম্বন্ধে অনেক কিছু আছে, আমার খুব যন্ত্রণা হয়, কথা জোর বললেই যেন খুব ব্যথা হয়, নাহলে আমার প্রাণিক থাকলেও আমি বলবার মতো আর এখন আমার সামর্থ্য নেই, আমার ঠিক আপনি আমার আর্তনা করে নেন, আমি এখান থেকে বিদায় হলাম, বাঞ্ছা কল্পিত একটি পছন্দ।
তৎপশ্চাৎ উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ, গৌরগত প্রাণ সজ্জনবৃন্দ আর মাতৃমণ্ডলীকে মে যথাযথ নিবেদন জ্ঞাপন করতা হুঁ। সবই লোক মুঝ পর কৃপা করেন কি মাঝি কা আদেশ হ্যাঁ গৌর কিশোর দাস পাজী মহারাজকে অপ্রাকৃত চরিত্র আলোচনা করনে কাজ ইসমে মে ব্রতি হ সকু। শাস্ত্র মে কাহা গিয়া, জো ইচ্ছে ইষ্টদেব প্রসাদ হন গিয়া, অবশেষ রাখেন কিছু সেবক লাগিয়া। ইসি প্রকার আমার গুরুবর্গকে শ্রীমুখে যে কুছ শোনা মে উসি কা কুছ দুবারা প্রস্তুত কর রহা হুঁ। শ্লোক গৌর আজ সুবে, আজ সুবহ শ্লোক মহারাজ জি पूज्यपाद माधव महाराज के मठ में जो कहा था उसी के दो एक पॉइंट में फिर बता रहा हूँ। गौर किशोर दास बाबाजी महाराज जी अपने जीवन चरित्र में हम देख उनके जीवन चरित्र हम देखते हैं, जो माधुगिरी करते थे जो मिलता उसी को गंगा जी के पानी में या जमुना जी के पानी में भिगो करके थक जो भोग लगा उसी को पा लेते थे। जब बहुत भूख लगती अच्छे से खाने की इच्छा होती तो नीम के पत्ते खाते थे या जमुना जी या गंगा जी कीचड़ उठा करके खा लेते थे। ऐसे करने से उनकी आंखें फूट गई। क्या अंधे हो गए? नहीं, अंधे नहीं, हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। हमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांच विषय हैं। ये पांच विषय के लिए पांच प्राणी मरते हैं, हम लोग उदाहरण में शास्त्र में देखा। लेकिन मनुष्य रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सब के प्रति आकृष्ट होता है। सबसे पहले आकृष्ट होता है किस में? आंखों के द्वारा रूप में। इसलिए मानो गौर किशोर दास बाबा जी प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग शिक्षा देने के लिए, प्रभु अंध करे दावा बंध करे दुखी चोर देखिते चाहे ना हमी पृथ्वी रत लोग। हम पहले आकर्षित कैसे होते हैं? आंखों के द्वारा आकर्षित होकर के विषय में फंस जाते हैं। जैसे बिरला मंगल ठाकुर ने दिखलाया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हम जैसे विषय में फंस न जाए इसलिए शिक्षा दिया। एक समय की बात, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी माधुपुरी करके कुछ चावल लेकर रखे घर में, सीखे में उठा के रख दिया। एक साहब उस पर चढ़े, एक विधवा ने देखा, उसने कहा बाबा जी महाराज जी आप उस चावल को मत लीजिएगा, साहब ने उसमें मुख दिया, उसमें जहर लगा हुआ है, आप मर जाएंगे। दो बार तीन बार चार बार कहा तब बाबा जी महाराज जी बिगड़ गए, पर तुम निकलो यहाँ से, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्यों बिगड़ गए? उनकी भलाई के लिए कहा और बिगड़ गए क्यों? इसका क्या शिक्षा है हम लोगों के लिए? शास्त्र में कहा गया निष्किंचनस्य भगवत भजनानुमुखस्य पारं परं जिगीविषोऽवसागरस्य सन्दर्शनं विषयिणां अतकुचितां च हा हन्त हन्त विषभक्षण तप्त साधु। निष्किंचनस्य भगवत भजनानुमुखस्य, जो निष्किंचन होकर के या अकिंचन होकर के भगवान के भजन करना चाहते हैं उनके लिए उपदेश हैं। और पारं परं जिगीविषोऽवसागरस्य, जो भवसागर के पार पार में जाना चाहते हैं उनके लिए भले ही विष खाना अच्छा है लेकिन विषय भोग की दृष्टि से इस स्त्री से बात करना देखना ये उचित नहीं है, क्योंकि विष भक्षण करने पर एक जन्म नष्ट होगा। अगर किसी युवक युवती के प्रति आकृष्ट हो जाए तो उनको आसक्ति की वजह से जन्म जन्मांतर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद ही तो क्या साधारण एक पशु के प्रति भी आकर्षण हो जाए तो जन्म जन्मांतर बीत जाता है। हम लोग भरत महाराज के बारे में सुनते हैं जिसके लिए शास्त्र में कहा गया उत्तम श्लोक लाल अस, जिन पुत्र को स्त्री को राज्य को त्याग करना मुश्किल है विशेष करके युवावस्था में, उसी को भरत महाराज जी मलवक त्याग कर दिया। त्याग कर आए भजन के लिए तो भावावस्था प्राप्त कर चुके थे। एक हिरण शिशु के प्रति आकृष्ट होकर उनका तीन जन्म बीत गया। इसी यही तो पशु के प्रति तीन जन्म बीता और स्त्री के प्रति आकर्षण हो जाए तो जन्म जन्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो निष्किंचन होकर के अकिंचन होकर के भगवान के भजन करना चाहते हैं उनको कभी भी स्त्री समापन नहीं करना चाहिए भोग दृष्टि से। तो निष्किंचन अकिंचन का सबसे तात्पर्य क्या है? निष्किंचन और अकिंचन एक ही बात है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर इसके टीका में कहा अकिंचन निष्किंचन के बारे में, कृष्ण ही जिनके एकमात्र धन है वो अकिंचन। जैसे हम लोग ओम उच्चारण करते हैं अ उ म, अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, मकर उच्चते राधा उकार जीव, उकार उच्चते राधा मकार जीव वाचक। अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, तो अ शब्द का तात्पर्य जो समस्त लोक के नायक कृष्ण वही अ ही किंचन जस्य स, कृष्ण ही जिनके किंचन है वो अकिंचन। तब जो कृष्ण को ही सर्वस्व मान लिया वो अकिंचन, इस पर जो भजन करना चाहते हैं उन लोग के लिए उपदेश दिया गौर तुलसीदास जी ने, अपने जीवन चरित्र के द्वारा शिक्षा दिया। और गौर तुलसीदास जी प्रणाम मंत्र में कहा गया, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये, साक्षात वैराग्य मूर्तिमान प्रतीक। वैराग्य शब्द का तात्पर्य विराग का भाव वैराग्य, विराग का विशेष रूपेण राग विराग तस्य भाव वैराग्य, साक्षात वैराग्य मूर्तये, वैराग्य के मूर्तिमान प्रतीक। वैराग्य शब्द दो अर्थ हैं, एक विषय के प्रति विराग, विराग विगत राग विगत अनुराग विराग, तो विषय से जिनका कृष्ण इतर विषय से जिनका अनुराग दूर हो गया ये तात्पर्य, और कृष्ण के चरण में विशेष रूप में अनुराग, ये वैराग्य दो प्रकार के हैं, एक युक्त वैराग्य और एक फल्गु वैराग्य। इस फल्गु वैराग्य के लिए कहा गया श्मशान वैराग्य, मर्कट वैराग्य और फल्गु वैराग्य। श्मशान वैराग्य अर्थात कहीं मर गए जलाने के लिए, गया फूकने के लिए मुर्दा घाटी में, और देखा अरे सब सब जीव का ही सब मनुष्य का देगी ये स्थिति होगी, ये देख करके वैराग्य पैदा हो गया कि दो दिन रहते रहते ये वैराग्य छूट गया, इसे श्मशान वैराग्य। और मर्कट वैराग्य बंदर का वैराग्य, दिखावटी वैराग्य, उनका कहा गया बानर अर्थात मानुष मनुष्य ही जैसा, तो क्या करते हैं न तो अपने लिए घर बाड़ी बनाते हैं न खेती बाड़ी करते हैं कुछ नहीं करते हैं, जो जहाँ मिंजर झपक कर खा लेता है और अत्यधिक कामुक होते हैं, दिखा दिखला रहे मैं साधु हूँ कुछ नहीं करता हूँ, कोई सामान लेकर जाए ऊपर से कूदेगा झपक उठा के ले जाएगा, ये मर्कट वैराग्य। और फल्गु वैराग्य जैसे फल्गु नदी में पानी नहीं दिखता है तो सब रेती हटाया जाए पानी दिखता है, इसी प्रकार ऊपर में वैराग्य के आवरण से अपने कामना वासना का भक्त रखने का नाम फल्गु वैराग्य। क्या गौर कुशोदास जी महाराज इसी प्रकार थे? नहीं, युक्त वैराग्यवान थे अर्थात भगवान के चरण में विशेष अनुराग था, ये युक्त वैराग्य। और गौर कुशोदास जी महाराज के बारे में हम लोग सुन चुके हैं कि जब हम लोग भगवान के बारे में आलोचना करते हैं तो भक्त के बाद आता है, ऐसे यदि गुरुदेव के उपयुक्त शिष्य हो तो गुरु जी उनके लिए गर्वबोध करते हैं। इसी प्रकार जैसा मैं पूर्व वक्त महोदय के श्रीमुख से सुना, बरम एक गुण एक पुत्र न तो मूर्ख सतान्नपी एक स्तंग तमोहंती न चतारा गणोपी, तत् भले एक पुत्र गुणवान हो ये जगत का अलोकित करेगा, सैकड़ों लड़के हो मूर्ख और तेरे काम चलाने का नहीं है। तो गौर कुशोदास जी महाराज उसने प्रतिज्ञा की थी मैं कभी शिष्य नहीं करूंगा, जैसे लोकनाथ गोस्वामी ने भी ऐसे ही किया था मैं शिष्य नहीं करूंगा, नरोत्तम ठाकुर जी अपने सेवा के दौरान वशीभूत कर लिया, इसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद अपने सेवा के द्वारा उनको वशीभूत किया। कहा गया सेवा के द्वारा मेवा मिलता है, सेवा कर तो मेवा मिलेगा, सेवा किए बिना कुछ संभव नहीं। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं अपने प्रतिज्ञा को रख नहीं पाते हैं, अगर भक्त में प्रतिज्ञा कर ले तो अपने प्रतिज्ञा को छोड़ना पड़ता है, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे अर्जुन तुम हाथ उठा कर प्रतिज्ञा करो, न मेरे भक्त प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अर्जुन पूछ रहे हैं आप ऐसे मुझे क्यों प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं देखो मैं प्रतिज्ञा करने पर मेरा प्रतिज्ञा कभी मैं निभा नहीं सकता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करूंगा भक्त यदि विपरीत प्रतिज्ञा कर ले तो भक्त का प्रतिज्ञा निभाना पड़ेगा। जैसे महाभारत हम देखते हैं कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी हम अस्त्र धारण नहीं करेंगे, तो दुर्योधन ने कहा आप निहत्ते रहेंगे अस्त्र धारण नहीं करेंगे आपसे जरूरत नहीं, आप नारायणी सेना मुझे दे दीजिए, तो नारायणी सेना ले गए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया हरि से अस्त्र कहाऊं अपने को सांत्वन पुत्र कहाऊं, अगर मैं भगवान से अस्त्र ग्रहण कराऊंगा तब मैं बाप का बेटा हूं। भगवान अपने प्रतिज्ञा रख न सके, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा उनको रखना पड़ा। ऐसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद प्रतिज्ञा किया कि मैं उनसे ही दीक्षा लूंगा, गौर कुशोदास जी महाराज जी इनकार कर दिया। प्रभुपाद जी अपने जीवन चरित्र में पीछे दैनों करके लिख रहे लिखे कि मैं बहुत बड़ा दाम्भिक था, इसलिए मेरा प्रभु मुझे पहले इनकार कर दिया। क्या प्रभुपाद सचमुच दाम्भिक थे? नहीं, वो दोनों करके कह रहे हैं। और जब उसने इनकार किया तो प्रभुपाद जी चांद्रायन व्रत शुरू कर दिया। चांद्रायन व्रत अर्थात जैसे चंद्रमा एक कला दो कला करके बढ़ता है फिर ऐसे घटता है, इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद पहले 15 ग्रास, 14, 13, 12, 11, 10, 9 करके 1 ग्रास फिर बढ़ाते थे ऐसे। उसमें भी नहीं हुआ और 2 ग्रास से खाना शुरू कर दिया। फिर देखा इसमें भी गौतम शिवाजी महाराज हृदय ग्रंथ नहीं हो रहा है, तो अब भक्तिवर ठाकुर ने कहा वैष्णव का उचित जीव में कृपा करना, क्या आप इस लड़के को मारेंगे क्या, इस बच्चे को आप थोड़ा कृपा नहीं कर सकते हैं? तब उन पर कृपा की, उनको शिष्य के रूप में अंगीकार किया। जब गौर किशोरदास शिवाजी महाराज जी अप्रकट लीला आविष्कार किए उस समय तथाकथित नवद्वीप के बाबा जी लोग कहे हम उनके शिष्य हैं। बाबा जी महाराज जी ने कहा था मेरा देहांत के बाद मेरा पैर में रस्सी बांधकर नवद्वीप में गली गली में घुमाकर गंगा जी में डाल देना ताकि मेरा सदगति हो जाए। मैं तो इस जन्म में भजन कुछ किया नहीं, ऐसे नवद्वीप धाम के गली गली में घुमाने पर और गंगा जी में डालने पर मेरा सदगति हो जाएगा। ये लोग उनको बांध करके घुमाने के लिए प्रस्तुत हो गए। उस समय उनके जो शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको पता चला, वो अपने शिष्यों के साथ आए, आके कह रहे हैं उस समय ये झगड़ा ना फैल जाए इसलिए पुलिस कमिश्नर में सब लोग आ गए थे। तब सरस्वती ठाकुर ने कहा इनके एकमात्र मैं ही शिष्य हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यदि कि इसमें से हो तो खड़े हो जाए, इधर सब बैठ जाए। मुझे दो खड़े हुए। फिर कहा जो 6 महीना तक बुरी भावना स्त्री के लिए बुरी भावना नहीं किया वो आ जाएंगे अपराकित कलेवर को स्पर्श करें, और ऐसे ना हो तो स्पर्श करते ही भस्म हो जाएगा। 1 महीना 1 हफ्ता 1 दिन कोई नहीं आए। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के द्वारा उनके अपराकित कलेवर को लेकर के जाके समाधिस्थ किया। जैसे श्रीमद महाप्रभु जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर के सियंग को लेकर के जा रहे हैं समाधिस्थ कर रहे हैं, इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने गुरु जी को ऐसे ही ले जा रहे हैं, ये इनको लीला को याद दिला देते हैं। गौर किशोरदास शिवाजी महाराज जी अपने जीवन में देखा जैसे श्लोक में कहा निष्किंचन से भगवत भजन मुखस्य विषय नाम अथ दोषितांच, दोनों के लिए कहा कल जो विषयी हैं उनके संग से पायखाना के संग करना अच्छा है, ये अपने आचरण में करके दिखलाया कि विषय के जो दुर्गंध हैं उनमें भजन नष्ट हो जाएगा, पायखाना गंध से नष्ट नहीं होता, यानी हम लोग के लिए अनुकरणीय नहीं है। तो गए वीर से वाले पायखाना जाकर दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। पुलिस कमिश्नर आए, बहुत से लोग आए, कह रहे मैं अस्वस्थ हूँ, मैं एक बार खोल नहीं सकता हूँ। बार बार प्रचेष्टा करने पर भी बाबा जी महाराज अंदर से की बार नहीं खोले। जब असमोदय परम गुरुदेव नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद श्री भक्ति प्रज्ञान के सदगोस्वामी महाराज और सरोजवासिनी पिसिना और कुछ प्रभुपाद विशिष्ट लोग गए उनके पास, तब उसने कहा मैं अस्वस्थ हूँ, दरवाजा खोल नहीं सकता हूँ। तब बताया हम लोग सरस्वती ठाकुर के अनुग्रहित हैं, सरस्वती ठाकुर ने हम लोगों को भेजा आपके दर्शन के लिए, कहो तुम सरस्वती को अनुग्रहित हो, तुरंत की बात खोल के उन लोगों को दर्शन दिया। हम महाराज जी के और गुरु महाराज जी से मुख से सुना कि परम गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा तुम भजन करो, तुम्हारे जितने विपत्ति हैं मैं अपने सिर पर ले रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। परम गुरु महाराज जी अपने शिष्यों के पास ऐसे कहा करते थे बाबा जी महाराज कृपा से ही मेरे ऊपर जितने भी झोड़ा ये सब दूर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। और इस महीना कार्तिक महीना या ऊर्जा व्रत, इसके बारे में हम लोग महाराज श्री मुख से सुना, ऊर्जा अर्थात शक्ति, कृष्ण शक्तिमान है, कृष्ण जो कुछ भी करें कैसे करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा ही करते हैं, शक्ति के बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब गिरिराज गोवर्धन हरण किया तो शक्ति के द्वारा ही तो किया, बाएं हाथ से किया, शक्ति साधारणतः बाएं तरफ ही विराज करते हैं, इसमें दिखलाया कि शक्ति के द्वारा ही गिरिराज हरण किया। यदि कृष्ण प्रेम जरूरत है तो राधा जी प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे गोस्वामी वर्ग कहते हैं राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति राधा निकुंज सदने सचतत प्रनित्तम राधा सुखे सुखम उपेत्त दुखे च दुखी कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र। जब श्रीमती राधा ठाकुरानी निकुंज वन में जाती हैं कृष्ण पीछे नहीं चले जाते हैं। जब वृंदा बीबी में जाती हैं कृष्ण ही पहुँच जाते हैं। राधा जी के सुख में कृष्ण जी सुखी, दुख में दुखी। कभी कृष्ण अकेला रह नहीं सकते हैं। फिर कह रहे हैं भक्ति न कृष्ण चरणी न चर करो मी चारती राधा पदम बुज रज कर साहस न तस्सा जिगंतर निपात विशेष वेत्ता दैवादेन मई परिस्थिति दासी बुद्धि। अहो मेरा सौभाग्य कब होगा जो राधा जी मुझे दासी के रूप में गिनती करेंगी। ऐसी यदि हो जाए तो भक्ति न कृष्ण चरणी न करो मी चारती मैं राधा जी के पाद पद्मों के धूलि के बल से मैं कृष्ण को परवाह नहीं करता हूँ। ऐसे भक्त ही ऐसे कह सकते हैं। तो इस ऊर्जा व्रत में इस महीना में बहुत से काम हुआ है, कृष्ण की बहुत से लीला हुई। जो कृष्ण चंद्र को उनका आदि अंत नहीं है, उनको कोई बांध ना सके, उनको माँ यशोदा अपने प्रेम रूपी रज्जु के द्वारा बांधा था। जो माँ पूर्णिमा बीत गया उसी पूर्णिमा में कृष्ण जन्म रास रचया था। पहले तो हुआ यशोदा दामोदर, रास के बाद जब कृष्ण फिर प्रकट भये, प्रकट होने के बाद गोपियों ने देखा कि राधा जी को छोड़ के चले ना जाए कभी। राधा जी के दोपट्टे के चुंदरी के साथ उनका दोपट्टा बांध दिया, इसलिए हुआ राधा दामोदर। ये लीला भी इसी महीने में हुआ था। और एक प्रतिपदा के दिन यशोदा माँ ने उनको बांधा था और कुछ साल बाद ही इसी प्रतिपदा के दिन कृष्ण जन्म गिरिराज का धारण किया था। इस प्रतिपदा के दिन ही ऐसे पुण्य मास, पुण्य तिथि, पवित्र मास है। इसी मास में ही श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी आविर्भूत हुए थे। अलगत विरह तिथि, विरह तिथि के लिए कहा गया। समय भी संक्षेप है और वक्ता लोग हैं तो मैं एक बात कहकर मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। विरह, जब श्रीमद महाप्रभु राय रामानंद प्रभु से वार्तालाप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, दुख में से कौन दुख सबसे बड़ा है, तब राय रामानंद प्रभु उत्तर दे रहे हैं कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं पर। कृष्ण भक्त के विरही सबसे बड़ा दुख है। इसी बात की पुष्टि हम महाप्रभु के सन्यास लेने के पहले ही देखते हैं। श्रीमद महाप्रभु जी शिवास पंडित के घर में दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे क्योंकि अनधिकारी लोग उसमें प्रवेश न कर जाएं, जाके कुछ गलत न समझें, अपराध होगा मरेगा, इसलिए दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे। शिवास पंडित के एकलता पुत्र था, उनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी शिवास पंडित के रोने लगी। तब शिवास पंडित ने कहा अगर तुम लोग कोई रोएगा या रोएगी मैं अभी तुरंत गंगा जी में जा करके मैं कूद करके पान को उतार दूंगा। तमाम इतना दुख है, कोई रो नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं रो पा रही हैं। सुमन महाप्रभु जी कह रहे हैं अहो आज कीर्तन में उल्लास क्यों नहीं, और कैसा उल्लास रखा, ऐसे तो उल्लास नहीं। किसने बताया शिवास पंडित के एकलव्य का पुत्र मारा गया, प्रभु मारा गया पहले क्यों नहीं बताया। तो शिवास पंडित को पूछा महाप्रभु ने तुम्हारा लड़का मर गया, तब कह रहे हैं पुत्र मरी जाए प्रभु ये बड़ा बथन कृष्ण भक्त विरह प्रभु ना जाए सहन। अरे प्रभु जी यदि किसी का पुत्र मर जाए ये तो बहुत व्यथा की बात है, लेकिन एक लगता पुत्र हो तो और बहुत दुख की बात है, इससे भी अधिक दुख क्या, कृष्ण भक्त विरह प्रभु ना जाए सहन। कृष्ण भक्त विरह सहन नहीं किया जा सकता है। इसमें दिखलाया कि विरह अर्थात विपूर्वक रह, अर्थात विशेष रूप में जब आप निश्चित साथ के लिए करते हैं उनको विरह कहा गया। श्रीला महाराज जी ने बताया सुबह एक मिलन और एक विप्रलम्भ। मिलन में ऊपर से हम देखते हैं मिलित होते हैं, मिलन में ऊपर से मिलता अंदर से खोता, विप्रलम्भ में ऊपर से खोता अंदर से मिलता। ये विरह के साथ पर जो महाराज ने बताया। इसके बाद और जो उनके अपराधिक जीवन चरित हैं और वक्ता लोग कहेंगे इसमें यदि क्रम मुरा कुछ भूल त्रुटि हो जाए आप लोग ये क्षमा कर देंगे, और जिसमें कुछ अच्छा लगे गुरुवर्गों की देन समझ करके आप लोग मुझ पर कृपा करेंगे। ताकि उन लोगों जो विचारधारा है, उन लोगों को जो आदेश हैं, जिनको मैं अपने जीवन में अपना करके मैं उन लोगों को सेवा कर सकूं। यही आप लोग चरण प्रार्थना करके आज विदा लेता हूँ। वंशा कल्पत रूपस्थ पिपा सिंधु भय वच पतितान पावन भो वश्य विभो नमो नमः।
श्रीमान जगदीश ब्रह्मचारी कुछ उनका जीवन के संबंध में और शिक्षाओं के संबंध में बोलेंगे।